रसकंद छठा अध्याय और 30वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। मुक्तो वर्तता ब्रह्मा पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तुन्मुखत्वात् वर्णानां मुख्योऽभूत् ब्राह्मणो गुरु। इसका अनुवाद इस प्रकार है, ये हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो हो सकता है जो हिंदी में लिखा है उसमें कुछ फर्क हो। कि हे कुरु वंश के प्रधान, वैदिक ज्ञान विराट के मुख से प्रकट हुई। जो लोग इस वैदिक ज्ञान के प्रति आकर्षित हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं और वे समाज के सभी वर्णों के स्वाभाविक शिक्षक और गुरु होते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति स्वपदांतिकम। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम साकर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो यहाँ पर संवाद चल रहा है विदुर जी और मैत्रेय जी के बीच में हरिद्वार में, और विदुर जी ने कई प्रश्न पूछे मैत्रेय जी से और मैत्रेय जी उन प्रश्नों के उत्तर में इन श्लोकों में भगवान के विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने मैत्रेय जी कुरुद्वह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और कुरुद्वह शब्द का प्रयोग यहाँ पर विदुर जी के लिए किया गया है, क्योंकि ये श्लोक मैत्रेय जी ने बोला है और वो विदुर जी को संबोधित कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि यह शब्द कुरुद्वह यह शब्द विदुर जी के लिए प्रयोग किया गया है। विदुर जी के लिए क्यों प्रयोग किया गया है? क्योंकि वे यद्यपि एक सूत शूद्र के रूप में उनका जन्म हुआ, लेकिन वास्तव में वे साक्षात यमराज हैं, धर्मराज हैं। So, मैत्रेय जी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए विदुर जी के लिए कुरुद्वह शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ पर इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के चौथे अध्याय के 13वें श्लोक का जो है उसका उद्धरण दे रहे हैं। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विधि कर्तारम अव्ययम्। कि ये जो चार वर्ण और आश्रम है ये भगवान द्वारा निर्मित हैं, भगवान के विराट रूप से प्रकट हुए हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है गुण कर्म विभागशः, कि ये जो चारों वर्ण और आश्रम है ये जाति के जन्म के आधार पर नहीं है बल्कि कर्म के आधार पर है। कर्म और गुण प्रधान है कि व्यक्ति में क्या गुण है और वो किस प्रकार का आचरण कर रहा है। सो, जो ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन करते हुए बताया गया है कि जो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से वैदिक ज्ञान की ओर आकर्षित है, वैदिक ज्ञान को पढ़ना चाहता है, वह ब्राह्मण है। और ब्राह्मणों के बारे में बताया गया उसके 6 कार्य हैं। यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह। सो जो व्यक्ति इन कार्यों में संलग्न है और स्वाभाविक रूप से संलग्न है, वह व्यक्ति ब्राह्मण कहलाने के योग्य है। ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म हुआ, वह केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण ही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी हो गया। प्रभुपाद इस विषय में बताते हैं कि जिस प्रकार एक डॉक्टर के पुत्र को हम डॉक्टर नहीं मानते जब तक कि वो डॉक्टरी की परीक्षा पास नहीं कर ले, जब तक उसमें डॉक्टर के गुण नहीं होंगे तो डॉक्टर का पुत्र होने पर भी उसको हम डॉक्टर नहीं मानते। तो ये जो ब्राह्मण है, ये गुण और कर्म के आधार पर पहचाने जाते हैं, और जो ब्राह्मण या वैष्णव है, इनकी जाति नहीं पूछी जाती कि किस जाति से संबंधित हैं, क्या कौन सी जगह से आए हैं। जिस प्रकार प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि हम कभी किसी डॉक्टर की जाति नहीं पूछते। अगर हमें लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत ही कुशल डॉक्टर है और अच्छे से इलाज करता है, तो हम उसकी जाति की परवाह किए बिना उससे इलाज करवाते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक रोगों का निवारण करने की शक्ति ब्राह्मण में होती है, वैष्णव में होती है, और इस कारण से हमें उस ब्राह्मण या वैष्णव की जाति के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। और जो व्यक्ति वैष्णवों की जाति के बारे में ज़्यादा, वैष्णवों को जाति के आधार पर उनका विश्लेषण करता है, वह व्यक्ति जो है वो नार की बुद्धि है उसकी, वो नरक में जाने का पात्र है। सोना अगर मल में भी पड़ा हो तो उठा लेना चाहिए, उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। अगर गुणों से युक्त स्त्री नीच कुल में भी अगर उसका जन्म हुआ है तो भी वो स्वीकार करने योग्य है। इसी प्रकार अगर कोई नीच कुल में जन्मा व्यक्ति, अगर उसके पास भगवत ज्ञान है, कृष्ण तत्व वेता है, अगर उसको कृष्ण भक्ति के बारे में ज्ञान है, शास्त्रों की जानकारी है, और वो शास्त्रों का जो वर्णन कृष्ण भक्ति के दृष्टिकोण से करने में सक्षम है, तो ऐसे व्यक्ति को गुरु का ओहदा देने में कोई भी हर्ज नहीं है। और हमें अपने शास्त्रों में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर कि एक वैष्णव की जाति के ऊपर विचार नहीं किया जाता। चैतन्य महाप्रभु ने इस बात पर विशेष बल देते हुए इस श्लोक, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि बा विप्रा किबा न्यासी शूद्र कहने नए, यही कृष्ण तत्व वेता सही गुरु है। ये श्लोक हमें प्राप्त होता है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 8वें अध्याय में, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि रामानंद राय ब्राह्मण नहीं है, फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण और सन्यासी होने के बावजूद रामानंद राय से आध्यात्मिक विषयों के बारे में अनेक जिज्ञासाएं की। और जब रामानंद राय ने उन्हें चैतन्य महाप्रभु को उत्तर देने में संकोच उनको हो रहा था, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको आश्वस्त किया कि रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु को उत्तर देने में संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति भी कृष्ण तत्ववेता, जिसके पास कृष्ण भक्ति का ज्ञान है, वो लोगों को भक्ति का ज्ञान देने का अधिकारी है, और गुरु का दायित्व संभालने में सक्षम है वो व्यक्ति। इसी प्रकार हमें अनेक उदाहरण मिलते हैं कि जिस प्रकार हरिदास ठाकुर हैं, वो मुसलमान परिवार में उनका जन्म हुआ, लेकिन हम लोग उनको नामाचार्य के नाम से जानते हैं और उनका आदर करते हैं। और यदि कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा व्यक्ति भी ऐसे महान आचार्य का अगर निरादर करता है, उनका अपमान करता है, तो उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। इसका उदाहरण हमें चैतन्य चरितामृत में मिलता है कि जब एक दफा हरिदास ठाकुर हरि नाम की महिमा पर प्रवचन कर रहे थे और बता रहे थे कि शुद्ध नाम से तो दूर की बात है, नामाभास से भी जो अभ्यास करता है, नामाभास में भी हरि नाम का जप करता है, उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो उनके इस बात को काटते हुए गोपाल चक्रवर्ती नामक एक व्यक्ति ने, जाति के ब्राह्मण ने, उन्हें उनका अपमान किया और उनको बोला कि ये बात अगर गलत निकली तो मैं आपका नाक काट लूँगा। इस घटना के 3 दिन बाद ही गोपाल चक्रवर्ती को कोर हो गया और उसकी नाक गलकर गिर पड़ी। तो हम देखते हैं कि जाति के आधार पर वैष्णव का विश्लेषण करने के लिए, जाति के आधार पर वैष्णवों को आदर का पात्र मानने वाले व्यक्तियों की नारकी बुद्धि मानी जाती है और वे कभी भी शुद्ध भक्ति के स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते। तो कई बार स्मार्ट ब्राह्मण ये तर्क प्रस्तुत करते हैं कि दीक्षा सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्मे व्यक्ति से, जो गृहस्थ है, केवल उसी से ली जा सकती है। लेकिन अगर हम अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का जीवन चरित्र देखें तो हम पाएंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने शिला ईश्वरपुरी से दीक्षा ली, जो कि एक सन्यासी थे, और शिला ईश्वरपुरी ने भी शिला माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ली, जो कि सन्यासी थे। तो ऐसा नहीं है कि गुरु का सन्यासी होना परम आवश्यक है। वर्ण और आश्रम का इतना अधिक महत्व नहीं है। महत्वपूर्ण बात, प्रधान बात यह है कि गुरु का दायित्व निभाने वाले व्यक्ति को कृष्ण का ज्ञान है कि नहीं, क्या वो कृष्ण की महिमा को जानता है, क्या उसे इस बात की जानकारी है कि कृष्ण को क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता, और किस प्रकार भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंध को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। जो व्यक्ति इस बात को जानता है, वह व्यक्ति गुरु का दायित्व निभाने के योग्य है। और इस विषय में पद्म पुराण में यह श्लोक दिया गया है, षट कर्मा निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णवा स्वपचो गुरु, कि अगर कोई व्यक्ति तंत्र मंत्र इत्यादि में बहुत अधिक दक्ष है, लेकिन अगर वह वैष्णव नहीं है तो उसको गुरु बनने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति चांडाल परिवार में पैदा हुआ, लेकिन अगर वो वैष्णव है तो वह गुरु बनने के योग्य है। तो हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद ने इस सिद्धांत को बहुत ही गंभीरता से अंगीकार किया और इस सिद्धांत के ऊपर श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद के गुरु और उनके गुरुओं ने, पूरी परंपरा ने इस सिद्धांत का पालन करते हुए पूरी गुरु परंपरा खड़ी की और पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। शिला सनातन गोस्वामी कहते हैं, यथा कांचनताम याति कामस्यम रस विधानता, जिस प्रकार कामस्यम रस विधानता, जिस प्रकार कांसे को हम अगर रस विधानता अगर कांसे को मरकरी के साथ अगर उसका रासायनिक प्रतिक्रिया की जाए तो उसको सोने में बदला जा सकता है, तथा दीक्षा विधाने न द्विजत्वम जायते निराम। इसी प्रकार दीक्षा विधान के द्वारा लोगों को द्विज अर्थात ब्राह्मण बनाया जा सकता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया है कि कोई विशेष जाति का व्यक्ति या कोई नीच कुल में जन्मा व्यक्ति वो द्विज या ब्राह्मण नहीं बन सकता। हर व्यक्ति को भगवान की भक्ति करने का पूरा अधिकार है, समान अधिकार है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि नीच कुल में जन्म लेने के कारण वह भक्ति करने का अधिकारी नहीं है। और प्रभुपाद इस श्लोक में के तात्पर्य में बता रहे हैं कि चाहे शरीर में मुख है, हाथ है, पैर है और उदर है, तो ये अलग-अलग जगह पर स्थित है, लेकिन जो शरीरधारी व्यक्ति है वो शरीर के विभिन्न अंगों के बीच भेदभाव नहीं करता। वो अपने हाथों का भी उतना ही ध्यान रखता है जितना अपने पैरों का। तो ऐसा नहीं है कि पैर में स्थित होने के कारण वो व्यक्ति जो है वो नीच व्यक्ति है, या हाथों में स्थित व्यक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है, या उदर में स्थित व्यक्ति और ज्यादा श्रेष्ठ है, ऐसा निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। हर व्यक्ति का अपना एक विशेष स्थान है, उसका एक कार्य है, और उस व्यक्ति उस विशेष कार्य की अनुपस्थिति में अगर वो कार्य उपलब्ध नहीं होगा तो सामाजिक व्यवस्था अच्छे से नहीं चल सकती। सो ऐसा नहीं है कि कोई अगर शूद्र व्यक्ति है वो कृष्ण भक्ति नहीं कर सकता, वो वैष्णव नहीं बन सकता। शूद्र परिवार में जन्मा व्यक्ति भी बिना किसी रुकावट के वैष्णव बन सकता है, कृष्ण भक्ति कर सकता है और लोगों को प्रचार कर सकता है। लेकिन ये प्रश्न उठाया जा सकता है कि शूद्र कुल में जन्मे व्यक्ति को तो विनम्र भाव रखना चाहिए और उसको कृष्ण भक्ति का प्रचार करने से, गुरु का दायित्व निभाने से बचना चाहिए। ये बात ठीक है, लेकिन ये बात ब्राह्मण कुल में जन्मे व्यक्ति के लिए भी उतनी ही लागू होती है। और क्यों जो वैष्णव है, वैष्णव क्यों भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, वैष्णव क्यों गुरु का दायित्व निभा रहे हैं? वैष्णव इसीलिए गुरु का दायित्व निभा रहे हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है। चैतन्य महाप्रभु ने सबको ये आज्ञा दी है, जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु है तारे देश। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह जिसको भी मिले उसको कृष्ण भक्ति का ज्ञान दे और गुरु का दायित्व निभाए। तो गुरु का दायित्व निभाना कोई बहुत अभिमान या गर्व की बात नहीं है, ये बहुत ही विनम्रता की बात है। और हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद, श्रील ऐसी भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद के जीवन चरित्र में देख सकते हैं कि यद्यपि उन्होंने गुरु का दायित्व निभाया फिर भी वे अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही विनम्र थे, और उन्हें गुरु का जो आसन है और जो गुरु को सम्मान दिया जाता है उसको स्वीकार करने में उनको बहुत संकोच होता था, लेकिन भगवान की सेवा के निमित्त वे बहुत ही विनम्र भाव से उसको स्वीकार करते थे। सो गुरु का दायित्व निभाने की सबसे बड़ी योग्यता ये है कि व्यक्ति सोचता है कि जो भी सम्मान उसे मिल रहा है वह उसका अधिकारी नहीं है, वह सारे सम्मान का अधिकारी जो है उनके गुरु हैं। और जो गुरु का दायित्व निभाने वाला व्यक्ति जो भी सम्मान मिलता है उसे तुरंत यथारूप अपने गुरु को ट्रांसफर कर देता है, कुछ भी सम्मान अपने पास नहीं रखता। इस प्रकार गुरु की सेवा करने से वह दूसरों को भी भक्ति में आगे बढ़ा पाता है और स्वयं भी भक्ति में आगे बढ़ता है। इन श्लोकों से हम देख सकते हैं कि जाति का कुछ खास महत्व नहीं है। जाति का महत्व सिर्फ इतना है कि एक विशेष जाति में जन्म लेने से उस प्रकार के कार्य करने की सुविधा मिलती है। एक ब्राह्मण कुल में जन्मे व्यक्ति को वेद पाठ करने की इत्यादि सुविधा सुलभ होती है। जिस प्रकार एक कुम्हार को मिट्टी के घड़े बनाने की शिक्षा बचपन से ही उपलब्ध रहती है, अगर उसकी रुचि हो तो वो बचपन से ही मिट्टी के घड़े बना सकता है। जिस प्रकार एक डॉक्टर के घर में जो बच्चा पैदा हुआ उसको बचपन से ही ऐसी शिक्षा मिलती है, ऐसी सुविधा मिलती है कि वो आगे बढ़कर डॉक्टर की पढ़ाई कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक कुम्हार का बेटा कुम्हार ही बनेगा या एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा। अपनी रुचि के अनुसार, अपने गुण और कर्मों के अनुसार व्यक्ति विभिन्न प्रकार के अन्य व्यवसाय भी अपना सकता है। उसी प्रकार विभिन्न वर्ण और आश्रम में स्थित व्यक्ति भगवान के बिना किसी रुकावट के भक्ति कर सकते हैं और लोगों को भी भक्ति में जोड़ सकते हैं। श्लोक का यही तात्पर्य है। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।